नमस्कार प्यारे दर्शकों, सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जीवन जीना भी एक कला है। जीवन तो सभी जी रहे हैं, जंतु जानवर भी जीवन जी रहा है, लेकिन मानव जीवन बहुत मूल्यवान है। लेकिन हम देखते हैं इस जीवन में कभी एक छोटी सी कमजोरी हमारे जीवन को पीछे ले जाता है। उस कमजोरी के ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं। ऐसे कौन कौन सी कमजोरी है जो हमारे विकास में बाधा है, हमारे खुशी जीवन में रुकावट डाल देता है। इसके ऊपर चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं ब्रह्मा कुमार सूरी भाई जी, संजय भाई, गीता बहन जी। आप तीनों का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आपसे मैं जानना चाहता हूं कि हम सभी आखिर मानव हैं, और बचपन से सुनते आते थे कि मानव जीवन बहुत अनमोल है, परमात्मा की अनमोल खजाना है। लेकिन जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है, कुछ कमजोरी आवरण के रूप में आने लग जाते हैं। बाल्यकाल में कई चीज पता नहीं चलता है, आगे बढ़ते हैं समाज में बीच में आते हैं तो किसी के अंदर क्रोध, किसी के अंदर ईर्ष्या, किसी के अंदर घृणा, किसी का नफरत, आखिर ये कमी कमजोरी हमारे अंदर जो आती है और वो खुशियां छीन ले जाती है, कैसे निकले इससे बाहर?
है, आपने बात की तो मुझे कई घटनाएं याद आ गई जो ईर्ष्या के कारण खुश नहीं रहते। उनमें बहुत सारी योग्यताएं होती हैं, क्योंकि हम तो एक बड़े संगठन में रहते हैं, अच्छाई भी बहुत दिखाई देती है, ऐसा लगता है यहाँ जैसे देवता तो कहीं नहीं है। लेकिन छोटी मोटी कमियों का भी दर्शन होता रहता है। योग्य बहुत हैं लोग हमारे पास, तो लोगों में थोड़ी बहुत ईर्ष्या किसी किसी में हो जाती है, यद्यपि उसको छोड़ने का प्रयास हमारे यहाँ निरंतर किया जाता है, क्योंकि हमारी टीचिंग सी ऐसी है कि सब अपनी अपनी कमियों को छोड़ते चले। कोई व्यक्ति जल्दी छोड़ देता है, किसी को समय लगता है। ईर्ष्या कि भाई दो समान रूप से योग्य व्यक्ति हैं, लेकिन एक की महिमा थोड़ी ज्यादा हो रही है तो दूसरे के मन में ईर्ष्या हो रही है। यद्यपि उसकी महिमा हो रही है, लेकिन वो दूसरे की महिमा सुनना पसंद नहीं करता। यहाँ मनुष्य के अंदर एक कमजोरी रहती है, महिमा केवल मेरी हो। ये जो संकीर्णता है ना विचारों की, ये ईर्ष्या के कारण खुशी को सदा के लिए नष्ट कर देती है, और मैं तो ये कहूंगा मनुष्य की प्रोग्रेस को ही रोक देती है। दूसरों को आगे बढ़ता देख, उनकी महिमा होते देख, उन्हें सफल होता देख, यदि हम उन्हें अप्रिशिएट करेंगे तो यही सब गुण हमारे अंदर भी विकसित होने लगेंगे। यही सूक्ष्म गति है, साइकोलॉजिकल ये फिलोसफी है, या ये कहें कर्मों की गति है। मानवता का यही एक सुंदर सिद्धांत है कि हम दूसरों को अप्रिशिएट करें, ईर्ष्या से बचें। हम ये मान लें, जान लें कि ईर्ष्या एक अग्नि है, और ऐसे ही क्रोध वो भी एक अग्नि है। जब किसी मनुष्य को क्रोध आता है वो खुश रह ही नहीं सकता, और जिस पे क्रोध आएगा उसकी भी खुशी जाएगी।
मैं थोड़ा सा बीच में बोलना चाहता हूँ कि कई बार हमारे पड़ोस वाले कोई बहुत प्रोग्रेस कर गए, कई बार ईर्ष्या तो आ ही जाता है कि भाई मेरे जैसे ही था 10 साल पहले, हम दोनों एक जैसे थे, लेकिन आज देखो ये कितना प्रगति कर लिया, कितना उन्नति कर लिया। ये ईर्ष्या ना आए ऐसा तो कई बार संभव ही नहीं होता। एक किसान है, दो किसान का आपस में खेत है, और जब जाते हैं खेतों पर तो देखते हैं फलाने के, इस किसान का तो खेत बहुत सुंदर है, बहुत इसमें फसल अच्छी हो गई, लेकिन मैं भी मेहनत करता हूँ, मेरे में कम आ रहे हैं। तो ये ईर्ष्या ना हो ऐसा तो कई बार संभव ही तो नहीं होता।
नहीं, देखिए ये सोचना तो गलत है कि ये ना हो और ये समाप्त हो जाए, लेकिन इसके लिए ये रहेगी और है, ये है, और प्राय देखा जाता है अच्छे अच्छे लोगों में भी थोड़ी बहुत ये हो जाती है, परंतु इसका निदान है, और इससे होने वाले जो नुकसान है उसकी हमें अच्छी तरह जानकारी होनी चाहिए। न केवल ईर्ष्या हमारी खुशी को नष्ट कर देती है और हमारी इनर पावर को भी खाने लगती है ये, और मनुष्य के चिंतन को भी निगेटिव कर देती है, मनुष्य के मन के विचारों की गति को फास्ट कर देती है, संबंधों को बिगाड़ देती है, एटीट्यूड्स को बिगाड़ देती है। ये सब चीजें एक व्यक्ति की प्रोग्रेस के लिए बहुत बड़ी बाधाएं बन जाता है और मनुष्य को पता नहीं चलता। आज तक हमने कई केस देखे, एक व्यक्ति ईर्ष्या कर रहा है, 4 लोगों से कर रहा है, लेकिन वो लोग निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं। योग्य ये उनसे ज्यादा है, पर ईर्ष्या के कारण ये निरंतर डाउन होते जा रहे हैं। तो पहले तो हमें ईर्ष्या द्वेष से होने वाले नुकसानों पर बहुत अच्छी तरह से सचेत रहना चाहिए और बचना चाहिए, और ईर्ष्या रखने से हम आगे नहीं बढ़ेंगे। अब इसका समाधान, इसका निदान हमें ये सोचना है कि वो लोग आगे बढ़ रहे हैं, अवश्य मेहनत कर रहे होंगे, अवश्य ही त्याग करना पड़ रहा होगा, अवश्य ही कुछ सहन भी कर रहे होंगे, अपनी योग्यताओं को बढ़ा रहे होंगे,
सीखे हाँ।
तो मैं और ज्यादा करूं जी, एक हेल्दी कंपटीशन चालू कर दें तो हम भी आगे बढ़ेंगे। और देखिए, किसी भी संगठन में एक ही व्यक्ति योग्य हो तो काम नहीं चलता, लेकिन 100 लोग हैं और उसमें से 80 लोग बहुत योग्य हो तो वो संगठन संसार को बदलने की ताकत रखेगा। तो हम ईर्ष्या को इस तरह समाप्त करें कि ये अग्नि है, मैं अपनी खुशी को इससे नष्ट क्यों करूं, मुझे जैसे वो आगे बढ़ रहे हैं मुझे और उनसे भी आगे निकल जाना है, खत्म हो जाएगी।
जी जी जी, बहुत अच्छी बात बता रहे भाई जी। लेकिन प्राय संगठन में ऐसा होता है जहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, 20 लोग हैं, एक फैक्ट्री है जहाँ पर बहुत लोग काम कर रहे हैं, अगर कोई एक वर्कर की बहुत महिमा हो जाती है या वो बहुत आगे चला जाता है, बॉस की नजरों में आ जाता है, तो बाकी लोगों को स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या हो जाती है। ऐसे समय जब हमारी उन्नति तो बहुत हो रही हो लेकिन दूसरे तरफ कोई ईर्ष्या भी कर रहा हो, कैसे अपने को सेफ रखे, वहां कैसे बचाए अपने आप को?
कई बार होता है कि व्यक्ति दूसरे की सफलता से ईर्ष्या करने लगता है, वास्तव में वो व्यक्ति से ईर्ष्या नहीं हो रही है, सफलता से ईर्ष्या हो रही है, उसकी खुशी से उसको ईर्ष्या हो रही है, तो वो खुशी उसके पास नहीं आती है। अब उसने ईर्ष्या की और उसका जो चिंतन चला वो फिर औरों को सुनाता है, तो धीरे धीरे उसका मंथन ही ईर्ष्या का हो रहा है, उसका मंथन ही घृणा भाव पैदा कर रहा है, तो उस व्यक्ति के सामने कभी भी खुशी नहीं आ सकती। उस संगठन में देखा जाता है कि एक बड़ा प्रोग्राम हुआ और उसमें सक्सेस मिली लेकिन महिमा 2 की हुई, तो उसमें 8 लोगों में से भी 2 ऐसे भी होते हैं जो ईर्ष्या करने लगते हैं, उनकी खुशी का प्रभाव उनके ऊपर न पड़ करके ईर्ष्या का प्रभाव पड़ जाता है और वो फिर उस संगठन से धीरे धीरे दूर चले जाते हैं और उनके जीवन में कभी खुशी आना संभव नहीं होता। इसीलिए मैं ये चाहता हूँ कि जिस व्यक्ति को बदलाव करना है अपने जीवन में, आगे बढ़ना है, तो वो पहले स्वयं से ही शुरुआत करे।
कई बार हमने देखा है जीवन में कभी ईर्ष्या किसी समाज में जब आ जाती है तो वो कई बार पतन कर देती है, नीचे की ओर ले जाती है, कैसे हम बचे आखिर, ईर्ष्या कहाँ कहाँ जाती है? और
ईर्ष्या जब किसी को नेम फेम मिलती है, सफलता मिलती है या कोई बहुत तेजी से प्रोग्रेस करता है तो नेचुरली ईर्ष्या क्यों आ रही है? क्योंकि उसका अपोजिट जो उसे चाहिए वो उसे नहीं मिल रहा है। अगर उसे भी वो चीज मिलने लगे तो मुझे नहीं लगता है कि ईर्ष्या आएगी। तो ये हमारा भी एक फर्ज बनता है, मान लीजिए आज मुझे बहुत नई फेम मिल रहा है या मेरे पास बहुत चांस हैं, तो जैसे हम दुनिया में भी कहते हैं कि भले आपके पास एक रोटी है और तुम्हारे पास 4 लोग बैठे हैं तो मिल बांट करके खा, तो उसमें एक एक टुकड़ा ही पेट में जाएगा लेकिन तृप्ति प्रदान करेगा, लेकिन 4 लोग मेरी तरफ देखते रहे और मैं पूरी रोटी खा जाऊं तो ये एक मैनर्स भी नहीं लगता और मुझे वो कहीं ना कहीं अटपटा लगेगा, हजम नहीं होगा, उनके संकल्प चलेंगे हम भूखे बैठे हैं और ये पूरी रोटी खा गया। तो मेरा ये मानना है कि अगर मेरे पास चांस हैं और बहुत ज्यादा हैं तो मैं अपने जो संगे साथी हैं, मेरे आसपास वाले हैं, उनको भी उसे प्रसाद की तरह बांटूं, जो मुझे चांस मिल रहे हैं उसे एक प्रसाद समझूं और उसे बांटूं, जिसमें जो योग्यता है, जिसमें जो टैलेंट है उसे देखकर परखकर, मैं तो खुद आगे बढ़ ही रही हूँ लेकिन हाथ पकड़ के उनका भी साथ साथ चलूं, तो इससे मैं ईर्ष्या से बच सकती हूँ और उनके अंदर जो एक ईर्ष्या पनप रही है उसकी जगह वो जो मैं अभी उनको चांस दे रही हूँ या जो उनको प्रोग्रेस दे रही हूँ या जो उनके टैलेंट पहचान कर उनके काम उनको काम दे रही हूँ वो भी उनकी भर जाएगी और ईर्ष्या कहीं ना कहीं बाहर आ जाएगी, तो वो हमसे ईर्ष्यालु व्यवहार नहीं करेंगे बल्कि हमारे शुभ चिंतक बन जाएंगे, उनकी शुभ भावनाएं मुझे और चांस दिलवाएंगे, वो जो हमारे वेल विशर बने उनकी जो पॉजिटिव एनर्जी हमें मिल रही है वो हमारे जीवन में और ज्यादा प्रोग्रेस लेकर के आएगी। तो हमें भी ये देखना चाहिए, भले वो पड़ोसी है, परिवार है या संगठन है, कि यदि मेरे पास चांस है, मेरे पास प्रोग्रेस है, मेरे पास बहुत कुछ है तो मैं बांटूं। तो मिल बांट कर सफलता को भी मिल बांट कर एंजॉय करें
जी, जी, जी,
जो भी टैलेंट्स हमारे पास है या जो भी प्रोग्रेस मिल रही है मिल बांट कर एंजॉय करें जी, तो हमारे चारों तरफ एक खुशनुमा माहौल बना रहेगा। मिल बांट कर हम चले, हमारा भी विकास हो और साथ में
सबका विकास। जैसे कि गीतावन बता रही भाई जी कि वास्तव में ईर्ष्या तो लोग करने वाले मिलेंगे ही। मैं दो बातें आपसे जानना चाहता हूँ। एक व्यक्ति जिनकी बहुत महिमा हो रही है, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, वो कैसे इस चीज को स्वीकार करे कि कितना भी कोई ईर्ष्या करे लेकिन मुझे उसकी परवाह नहीं करनी है। दूसरी बात, जो ईर्ष्या कर रहे हैं उनके स्वभाव में आ गया है, उनके संस्कारों में आ गया है, मुझे हर बात में किसी न किसी के लिए ईर्ष्या रखनी है, तो वो कैसे चेंज करे और वो कैसे स्वीकार करे।
देखिए, बहुत ही सुंदर बात आपने पूछ ली है और मैंने अपने जीवन में अब से 48 साल पहले ही ये निर्णय कर लिया था, निश्चय कर लिया था कि मैं यदि आगे बढ़ूंगा तो लोग मुझसे ईर्ष्या करेंगे अवश्य। तो एक चीज ये रख ली कि उनकी ईर्ष्या के कारण मुझे अपनी प्रगति को रोक नहीं देना है। लोग भले जलते रहें, हम आगे बढ़ते रहें। ये तो हमारा बचपन था, हम ऐसा सोचा करते थे इन्हें जलने दो, ये जल के राख हो जाएंगे। और अब हम ऐसा नहीं सोचते, अब हम सोचते हैं हमें इनकी ईर्ष्या का भी निदान कर देना है, ये भी खुश हो जाएं, जैसे गीता बहन कह रही थी उनको भी प्रसाद बांटते रहो। तो पहली चीज तो मैंने अपने जीवन में सीखी कि हमें निरंतर आगे बढ़ना है और किसी की ईर्ष्या हमें रोकने में सक्षम नहीं हो सकती,
मतलब उसकी परवाह नहीं की।
हाँ, नहीं तो क्या होता है, कभी कभी वो ईर्ष्या करने वाले हमारे बहुत नजदीकी फ्रेंड्स होते हैं तो थोड़ा इफेक्ट हो जाता है। हमारे यहाँ हमारे इंस्टीट्यूशन में हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे पास हजारों स्पीकर्स हैं। एक बार एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का कोई अच्छा व्यक्ति मेरे से मिल रहा था, मैंने उसे पूछा आपके यहाँ कितने स्पीकर हैं? सोचने लगा अच्छा तो एक ही है, मैंने कहा और दो तीन और होंगे। फिर उसने पूछ लिया आपके यहाँ कितने होंगे, मैंने कहा कम से कम 1000। 1000? मैंने कहा तो मैंने कम बताया है, हमारी हर टीचर अच्छी स्पीकर रहती है, हजारों स्पीकर्स हमारे पास।
मैं थोड़ा सा बीच में जानना चाहता हूँ भाई साहब कि इतने हजारों आपके यहाँ स्पीकर हैं, आखिर इनको कौन ट्रेन करते हैं?
हाँ, ट्रेनिंग देते हैं। देखिए ये ऐसा है कि जब मनुष्य योग अभ्यास करता है और उसको बोलने के अवसर बहुत मिलते हैं, हमारे यहाँ एग्जीबिशंस लगती हैं, चित्रों पे समझाना है, तो उसका वो फियर खत्म हो जाता है बोलने का, और दूसरा ज्ञान का भंडार मिल जाता है। तो एक अथाह ज्ञान हमारे पास रहता है, इसलिए स्पीच करने में किसी को हिचक नहीं होती है, क्योंकि जो हमारे सामने बैठे वो हजारों लोग हैं, वो आत्मा के बारे में भी कुछ नहीं जानते। हमारी सिंपल बहने भी अगर आत्मा पे लेक्चर करेंगी तो वो उनको बहुत प्रिय लगेगा। तो ज्ञान का भंडार है, योग अभ्यास से शक्तियां बढ़ गई हैं और ये बोलने की जो सेवा है उसके कारण वो हिचक या भय खत्म हो जाता है, इसलिए हमारे यहाँ बहुत जल्दी लोग स्पीकर बन जाते हैं और चांस रहते हैं। तो मैं वही बात कह रहा था कि अभी मान लो 10 स्पीकर हैं और सब योग्य हैं, तो एक सेवाओं की सफलता के लिए सभी की योग्यताओं को यूज करना, उन्हें चांस देना परम आवश्यक है। दो को नहीं देंगे उनका मन थोड़ा सा तो उदास सा रहेगा ना, हम भी 10 मिनट भी बोलते तो कितना अच्छा होता। तो एक वाइब्रेशंस में सफलता की तरंगे नहीं उठती हैं। तो हमने देखा कि अगर हम ये अवसरों को प्रसाद की तरह बांटते हैं, मुझे ना मिले दूसरे 10 लोग हैं उनको हमने प्रसाद की तरह अवसर बांट दिए, तो सफलता बहुत अच्छी हो जाती है। मैं अकेला ही करता तो सफलता शायद 10% ही होती। तो ये हम ध्यान रखते हैं अपने संगठन में तो ईर्ष्या द्वेष का माहौल कम बन पाता है,
मतलब खुशी का माहौल बनाए रखने के लिए सभी की योग्यताओं को यूज करना को आगे बढ़ाएं।
अभी बात है कि किसी में ईर्ष्या उठ रही है, मान लो मेरे में ईर्ष्या उठ रही है किसी भी कारण से, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं अपने टैलेंट्स को बढ़ाता रहूं, चाहे वो भाषण करने का हो, लिखने का हो, गाने का हो, म्यूजिक देने का हो, या किसी कार्य को संभालने का हो, जिम्मेदारी संभालने की योग्यता हो, या संगठन को एकजुट करने की योग्यता हो या सबको संतुष्ट करने की अच्छी योग्यता हो, हम अपनी इनर क्वालिटीज को बढ़ाते चले जाए। और ये सृष्टि का विधान है जिसमें जो क्वालिटी आ जाएगी उसका यूज अवश्य होगा। अब यूज करने वाले को ये सोचना है कि हम मैपन से रहित होकर दूसरों को सम्मान देते हुए अपनी योग्यताओं को यूज करेंगे तो हमारे अंदर जो भी ईर्ष्या रहती है समाप्त हो जाएगी, क्योंकि हम भी समान रूप से आगे बढ़ेंगे। और मान लो कहीं हमें अवसर नहीं मिलता, ऐसा भी हो सकता है कि हमसे कम योग्य व्यक्ति को अवसर मिल रहा हो, तो हमें खुश होना चाहिए कि इस अवसर को पाकर ये भी योग्य बनेगा।
कई बार ये संभव नहीं होता भाई जी कि अगर हमारे से कोई कमजोर है और उनके अंदर कम योग्यता हो, उनको अगर चांस मिल रहा है तो स्वाभाविक रूप से ईर्ष्या आ जाता है।
इसमें बस हमें थोड़ा उदार होना पड़ता है, विचारों की संकीर्णता को छोड़कर विचारों की उदारता यानी ब्रॉडनेस ऑफ थॉट अपनानी पड़ती है। तो ये व्यक्ति भी कुछ सीखेगा, आगे बढ़ेगा, हम तो आगे हैं ही पर ये भी आगे बढ़ेगा। इस तरह हम अपनी ईर्ष्या को समाप्त कर सकते,
एक भाव और पैदा कर सकते हैं कि ये मेरे हैं, मेरे अपने हैं, तो अपनों को आगे बढ़ाना बहुत सहज हो जाता है और वो भाव पैदा ही नहीं होने देते संगठन में, और वो आगे बढ़ते हैं, पूरे संगठन के साथ आगे बढ़ते हैं।
जब ये मन में आ जाता है कि ये बहुत आगे निकल जाएगा, इनका नाम मान सम्मान हो जाएगा, कहीं मैं पीछे ना छूट जाऊं, लेकिन जब अपनापन आएगा तो ये लगे कि नहीं ये भी आगे बढ़े,
ये भी आगे बढ़े।
जैसे एक माँ बाप
देखिए हमारे घर में
ये सोचते हैं,
हमारे परिवार में हम चार भाई बहन है और यदि मेरा ब्रदर जो है बड़ी अच्छी पोस्ट पर है, बहन अच्छी पोस्ट पर है और उसका दिनों दिन प्रमोशन हो रहा है तो मुझे खुशी मिलेगी ना, मेरा भाई का प्रमोशन हो रहा है क्योंकि वहाँ मेरापन है। ऐसे यदि हम सबसे मेरापन बढ़ाकर चले, ये सब मेरे हैं और वास्तव में हकीकत ये ही है क्योंकि हम सब जो है उस परमात्मा की संतान है, परायापन तो है ही नहीं। जैसे हमारे ये शरीरों के पिता है, ठीक है, शरीरों के पिता तीन चार बच्चों को जन्म देते हैं तो वो एक परिवार बन जाता है, उनकी प्रोग्रेस के लिए उनकी सफलता के लिए हम जी जान लगा देते हैं क्योंकि वो मेरे हैं, मेरा भाई है, मेरी बहन है, इस तरह से। तो हम परमात्मा के बच्चे भी तो सब एक ही हैं, हम कोई अलग थोड़ा ही है या पराये थोड़ा ही है, हम सब आत्माओं का पिता भी एक है तो हम एक ही हैं। तो अगर कोई भी आगे बढ़ रहा है तो उसमें मेरा पूरा सहयोग पूरा समर्थन होना चाहिए।
जैसे गीता में बता रही भाई जी कि हम सब परमात्मा की संतान है, एक है, ये सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आज हम देखते हैं समाज में कि अपने भी पराये लगते हैं, अपने लोग भी जैसे गलत नजर से हम देखते हैं, उनको पराया समझते हैं, इसके कारण भी हमारे जीवन में खुशियां छिन जाती है।
ये बिल्कुल, ये भेदभाव जो है ये भी खुशी पर एक आपसी प्रेम पर जी। एक परिवारों में सौहार्द का माहौल उस पर एक कुठाराघात होता है। तो हमें जब ईश्वरीय ज्ञान मिला है तो एक दृष्टि बदली, सुनते पहले से आते थे लोग भाषणों में भी कहते थे वसुधैव कुटुम्बकम, लेकिन ये प्रैक्टिकल होता नहीं है। तो जब हमें ईश्वरीय ज्ञान मिलता है तो हमें ये पता चलता है कि सभी रूहें हैं, सभी आत्माएं हैं। अभी जिन धर्मों के प्रति हमारे मन में थोड़ी बहुत निगेटिव फीलिंग होती थी, अब हमें लगता है नहीं ये तो सब हमारे अपने हैं, वो भगवान के लिए दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं पर हमारा परमपिता सबका एक है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है ये मनोवृत्ति के परिवर्तन की बात कि ये विश्व एक परिवार है और सब हमारे अपने हैं। अभी देख लीजिए, मान लो हमारे देश में, हमारे एक टाउन में देख लीजिए, अब 10 जाति के लोग रहते हैं, उनमें से 2 जाति वाले बहुत परेशान और दुखी रहते हैं, तो उसका इफेक्ट सब पर आएगा। अब मान लो भूखे मर रहे हैं, अब बेचारे क्या करेंगे, फिर कभी ना कभी वो सोचेंगे यार चलो चोरी करने कहीं, भूखा कैसे बच्चों को रखेंगे, चलो ये पैसे वाला है ना, ये पैसा लेकर जा रहा है बैंक वाला, इसको लूट लें, तो विकृति पैदा हो जाती है। इसलिए जब सबके प्रति संभाव आ जाता है तो हमारे वाइब्रेशंस बहुत सुंदर हो जाते हैं और उसका इफेक्ट टोटल सुख शांति समृद्धि पर पड़ता है। मैं तो ये कहूंगा अगर एक सिटी में सभी लोग इस आत्मिक भाव में आ जाएं, सब आत्माएं हैं, सब रूहें हैं, ऑल आर सोल्स, सब भगवान के बच्चे हैं, तो उस सिटी में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, उस सिटी में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पिएगा, उस सिटी में कि कहीं भी दुख अशांति लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, बड़ी सूक्ष्म गति है स्पिरिचुअल वाइब्रेशंस की।
जी 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 जी, बहुत अच्छी बात जानने को मिल रही है भाई साहब की। हम सब के अंदर योग्यता तो है, विशेषताएं हैं, लेकिन उसको जाने पहचाने और एक अपनापन सबके प्रति, चाहे वो समाज के किसी भी वर्ग के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी संप्रदाय के हो, लेकिन ये प्राय ऐसा होता है कि अगर मैं ऊंची जाति का हूँ, मेरे बगल में कोई नीच जाति का है, उसको कैसे मैं अपना समझूं। गीता में थोड़ा सा इसके ऊपर प्रकाश डालें कि कैसे हम उसको अपना समझ करके परिवार की तरह देखें।
देखिए, आज के जमाने में अपनों को पराया भी बनाने में मेहनत नहीं लगती, बहुत जल्दी अपने पराये हो जाते हैं, बोल से, व्यवहार से, संस्कार से, अपने एटीट्यूड से। जो अपने सगे हैं वो पराये बन जाते हैं, जो मित्र हैं वो शत्रु बन जाते हैं। मित्रों को शत्रु बनाने में कोई मेहनत नहीं, कोई खर्चा नहीं, कोई टाइम नहीं लगता है, लेकिन महानता इस बात की है कि हम शत्रुओं को मित्र बनाएं, जो पराए हैं उनको अपना ले, उनको अपना बनाए, उनके बीच की हमारी दूरियां खत्म हो जाएं। और ये हमें ईश्वरीय विश्वविद्यालय में सिखाया जाता है, यही जीवन जीने का एटीट्यूड, यही सुंदर कला, यही आर्ट ऑफ लिविंग, ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो सिखाई जा रही है, जहाँ वास्तव में जो विरोधियों को सहयोगी बनाने की ताकत रखते हैं, शत्रुओं को मित्र बनाने की ताकत रखते हैं, जहाँ अपनापन है, जहाँ हर चेहरे पे मुस्कुराहट है। देखिए, हमारा ये विश्वविद्यालय है और हेडक्वार्टर माउंट आबू में है, यहाँ कॉन्फ्रेंस होती रहती है, इतनी विंग्स होती रहती है, हमारे यहाँ विंग्स के प्रोग्राम होते रहते हैं, अच्छे अच्छे लोग यहाँ आते हैं, और सबका एक एक्सपीरियंस रहता है कि यहाँ सबके चेहरे पर मुस्कुराहट है, सब खुश हैं, चाहे उनको कोई भी सेवा मिल रही है। यहाँ काम शब्दों में यूज नहीं करूंगी, क्योंकि सब भगवान की सेवा कर रहे हैं, स्वइच्छा से कर रही हैं, निस्वार्थ भाव से कर रही हैं, समर्पण भाव से कर रही हैं। तो जब वो हमारे कैंपस में घूमते हैं तो एक चीज उनको बड़ी अच्छी लगती है कि सबके चेहरों पर मुस्कुराहट है, सब खुश हैं, सब स्माइल पास कर रहे हैं, या हमें कोई भी एक व्यक्ति ऐसा नहीं दिखा जो बोझिल हो, टेंशन में हो, उदास हो, गहरी सोच में बैठा हो। सबका ए टू जेड, अगर 1000 लोग आए तो ये 1000 लोगों का 100% एक्सपीरियंस होता है, जो वो फीडबैक्स में लिखकर भी जाते हैं और जो है ओपिनियन वगैरह देते हैं, या कोई एक्सपीरियंस अपने अपने स्थानों पर जाकर सुनाते हैं, वो ये बताते हैं।
हाँ, लेकिन यहाँ ईश्वरी परिवार है, एक दूसरे के प्रति बहुत प्यार है, ये देखने को मिलता है। लेकिन जो दुनिया में है, आप तो ऐसे समाज में है लोग की एक दूसरे अपने सके भाई को भी देखना नहीं चाहते, इतनी नफरत, इतनी ईर्ष्या लोगों में फैल रही है, वो कैसे आपस में प्यार।
तो यही भगवान ने हमको सेवा दी है ना, यही भगवान ने सेवा दी कि आप पहले अपना परिवर्तन करके फिर औरों का परिवर्तन करने में सहयोग करो। और आज ब्रह्मा कुमारी संस्था यही तो कर रही है, खुद खुश रह करके संसार में खुशियां बांट रही है, घरों को आश्रम बना रही है, घरों को मंदिर बना रही है, जिनमें कलह कलेश आ गए हैं उन्हें शांति सिखा रही है, यही तो सेवा कर रही है हमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो संस्था है।
आज हमें बहुत सुंदर ज्ञान का प्रकाश मिला कि वास्तव में देखो, परिवार में रहते हैं हम, एक समाज में रहते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझ पाते थे कि वास्तव में एक दूसरे को अपना समझे। हम अपने को ही अपना समझते थे, पराये को पराये समझते थे, लेकिन आज जानने को मिला आप लोगों की चर्चा के माध्यम से कि सबको अपना समझे। आप लोगों ने बहुत सुंदर सुंदर विचार रखे, उसके लिए पुनः धन्यवाद। प्यारे दर्शकों, आज हमें यह ज्ञात हुआ कि हम सब एक परमात्मा की संतान हैं, आपस में एक हैं, और जब हम अपने को एक समझने लग जाएंगे तो एक दूसरे के प्रति प्यार होगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह होगा, हम उसकी भलाई देखेंगे, सबकी भलाई में अपनी भलाई समझेंगे। तो एक संकल्प ले लें कि हम सभी एक हैं, ये पूरा संसार की जितनी मनुष्य आत्माएं हैं, हम सब आपस में भाई बहन हैं, एक परमात्मा की श्रेष्ठ संतान है। कि संकल्प के साथ अपने जीवन की यात्रा को बिताएंगे तो आपका जीवन सचमुच खुशहाली से भर जाएगा। पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।